ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जाए। भगवान नरसिंह देव की स्तुति हर संप्रदाय के आचार्यों ने की है। श्री श्रीमद् भागवत के जो अधिकृत और सर्वश्रेष्ठ टीकाकार हैं श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिकोण से श्री श्रीधर स्वामी, ये स्वयं एक बहुत वरिष्ठ उत्तम कोटि के उत्तम श्रेणी के महाभागवत भक्त थे। नरसिंहदेव के चरण कमल आश्रित श्रीधर स्वामी नरसिंहदेव के भक्त थे और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु उनको सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आदरात्मक भाव से रखते थे। एक भक्त ने कहा कि देखिए मेरी टीका देखिए भागवत पर, ये शायद श्रीधर स्वामी के टीका से भी वरिष्ठ होगी, तुलना में देखो तो उनसे भी वरिष्ठ हो सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रोध आया। सहिते न पारे प्रभु मने करे क्रोध, महाप्रभु सहन नहीं कर पाए और बहुत क्रोध किए और कहे कि श्रीधर स्वामी से बढ़कर कोई टीकाकार हो नहीं सकता। और यही श्रील श्रीधर स्वामी जो सर्वश्रेष्ठ टीकाकार माने जाते हैं महाप्रभु के दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत के ग्रंथ आधार पर, ये प्रहलाद नरसिंह देव के चरणाश्रित थे, भक्त थे। उन्होंने नरसिंहदेव की स्तुति में कई सारे श्लोकों की रचना भी की है। श्रील श्रीधर स्वामी का क्या कहना, बड़े बड़े दिग्गज श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी ने भी नरसिंहदेव की स्तुति की है, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने भी नरसिंहदेव की स्तुति की है, निम्बार्क आचार्य जी ने भी नरसिंहदेव की स्तुति की है और श्रीपाद मध्वाचार्य और श्रीपाद रामानुजाचार्य की तो कहना ही क्या। गौड़े संप्रदाय के आचार्यों ने भी नरसिंहदेव की स्तुति की है। ये भी कह सकते हैं कि भगवान के अन्य अवतारों ने भी स्तुति की। जब भगवान रामचंद्र स्वयं भ्रमण कर रहे थे, पर्यटन कर रहे थे, वो एक नरसिंहदेव के मंदिर में आए, ये रामायण में पाई जाती है ये घटना। और जब नरसिंहदेव के मंदिर में दर्शन के हेतु तो प्रभु रामचंद्र स्वयं आते हैं तो उनके मुख से उदित, उनके मुख से उद्धृत ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कई भक्त जानते हैं इन श्लोक को। रामचंद्र भगवान ने इस श्लोक की रचना की स्वयं। गोविंद केशव जनार्दन वासुदेव विश्वेश विश्व मधुसूदन विश्वरूप श्री पद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते। हे नृसिंह, मैं आपके चरण में नतमस्तक होकर प्राण न्योछावर करके मैं दंडवत अर्पित करता हूं। रामचंद्र भगवान कह रहे आप कौन है, भिन्न भिन्न युग में भिन्न भिन्न काल और परिस्थिति अनुसार अलग अलग रूपों में नामों में लीला करने हेतु आप अवतरित होते हैं। देखिए तेरा नाम है एक ही श्लोक में तो आप कंठस्थ कर सकते हैं, कुछ श्लोक आए ना आए ये श्लोक कंठस्थ करने पर एक श्लोक वसंत तिलका छंद में बद्ध एक श्लोक में भगवान के तेरा नाम बद्ध है। गोविंद केशव जनार्दन वासुदेव विश्वेश विश्व मधुसूदन विश्वरूप श्री पद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायण अच्युत नृसिंह, क्षमा करे 14 नाम। नरसिंह देव आपके इन सभी नाम प्रसिद्ध हैं और अंत तो गत्वा मैं नरसिंह नाम कहकर नमो नमस्ते, ऐसे रामचंद्र कह रहे। आप अलग अलग नाम में अंकित हैं, आपका नाम प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है, प्रख्यात है, परंतु मैं आपके नामों का उच्चारण करके अंत में नरसिंह नाम लेकर मैं नमो नमः नमन करता हूं। ये प्रभु राम के विषय में ऐसा कहा गया है कि जब परशुराम जी क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध करने गए तभी भी उन्होंने नरसिंह व्रत किया, नरसिंह देव के मंदिर में जाकर प्रार्थना की ताकि शक्ति से परिपूर्ण होकर वो अब युद्ध करने में सक्षम रह सके। किन की बात कह रहे हैं, परशुराम जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे पृथ्वी में कई बार भ्रमण करके क्षत्रियों के कुल को नष्ट विनष्ट किया, पूर्ण रूप से उन्मूलित किया, क्योंकि ये सब क्षत्रिय धर्म विरुद्ध या धर्म पथ से पथभ्रष्ट होकर निषिद्ध आचरण में लगे थे। तो इसलिए परशुराम जी ने उनके वध हेतु, धर्म स्थापना करने हेतु नरसिंह देव से प्रार्थना की। भगवान कृष्ण के विषय में तो कहना ही क्या, भगोरे ऋषि ने जब भगवान कृष्ण को दीक्षा दी वृंदावन में, तब उन्होंने एक नरसिंह मंत्र दिया था कृष्ण को, ताकि हे कृष्ण जब तुम वन में विचरण करोगे, अलग अलग गोचारण लीला के लिए भगवान बाल गोपाल को तो जाना ही पड़ेगा, नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने गौ बछड़ों को लेकर वन, एक वन से दूसरे वन, द्वादश कानन है वृंदावन, 12 वन है, तो वन से वन भ्रमण करते समय ताकि कोई जहरीला सांप ना हो, कोई ऐसा वृक्ष ना हो जिनको स्पर्श करने से विष लग जाए, ऐसा कोई फल का पान ना करे जिनमें विष हो, कोई भूत प्रेत कोई राक्षस हावी ना हो जाए यशोदा नंदन कृष्ण पर। सबसे बड़े काला जादू तो यही है। इन पर कौन सा काला जादू लगेगा? नटकट बाल गोपाल की जाए। वन विचरण करते समय इनके रक्षा हेतु रक्षा कवच, नृसिंह कवच मानकर भगोरी ऋषि ने नृसिंह मंत्र दिया था, और प्रतिदिन मैया यशोदा, जैसे कहते हैं ना नजर उतारना, लाला कभी नजर उतारती थी नरसिंह मंत्र उच्चारण करके, और जब भी लाला जाए वन की ओर जाए तो मैया पुकारती थी लाला को, उनकी जो भी पोटली भरकर देती थी प्रसाद, और कहती थी कहीं कुछ डर लग जाए तो बलदाऊ का हाथ धर लेना और नरसिंह मंत्र उच्चारण करना, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। और यहाँ बाल गोपाल मन मन मुस्कुरा रहे हैं कि जिनका अंश अवतार नरसिंह देव है, पूरे जगत की रक्षा करने वाले, अब उन्हीं के स्रोत, उन्हीं के उद्गम स्थान, सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि भगवान श्याम सुंदर वृंदावन में जब प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं, माँ यशोदा के वात्सल्य, शुद्ध निर्मल निस्वार्थ अनंत वात्सल्य प्रेम की क्या सीमा, कि उन्हीं कृष्ण की रक्षा हेतु पोषण हेतु वो उन्हीं के अंश अवतार का नाम लेकर कह रही है उनके कवच, उनके नामों का कवच पढ़ लेना। एक बार मैया यशोदा लाला को शयन के समय कथा बता रही थी, तो लाला कहते हैं कि मैया कुछ नई कथा बताओ, हर रात को वही वही कथा बताती है। मैया कहे अब हम कहाँ से नई नई कथा लाएं, जो ब्रज के गांवों में जो अलग अलग गोपन और गोपियां एकत्रित होकर जो कथा सुनाती है, हम तो कोई शास्त्र पढ़े नहीं है। हम तो गौदोहन करती हैं, हम कहाँ से अब तुम्हें नई नई कथा बताएं। लाला कहते हैं पर वही कथा मैं तो कई बार सुन लिया, अब नई कथा बताओ। मैया कहती ठीक है अब एकदम फ्रेश कथा है, नई कथा, ये एकदम सही कथा है, सुन लेना इसको। पता है बहुत साल पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दशरथ, और दशरथ महाराज के पटरानियां थी पर कोई संतान नहीं था। अब लाला शयन कक्ष में सोए हैं, अब शैया लेट कर अभी सुन रहे हैं कथा, अपने ही वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहे हैं, अब पिछले अवतार में त्रेता युग में जो राम बनकर आए, अब जो लीला किए हैं उन्हीं को उनकी माँ उनकी कथा सुना रही है। देखिए हरि कथा की विशेषता देखिए, स्वयं हरि उनकी कथा सुनते हैं। वैसे इस कथा से आपको गलत अर्थ नहीं निकालना है, जब हरि स्वयं कथा सुनते हैं सोने के लिए, तो हम अगर कथा में सोए तो इसमें गलत बात क्या, ऐसा नहीं लेना अर्थ। अर्थ इसका अब गलत हो जाएगा। अर्थ हम इस बात का कह रहे हैं कि हरि स्वयं अपनी कथा सुनते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब द्वारकाधीश थे तो रामायण सुनते थे, इसका प्रमाण आता है कि वो स्वयं दोपहर के समय रामायण सुनते थे, ऐतिहासिक पुराणों से कथा सुनते थे, अपनी ही कथा है पर नरवत लीला है, नर समान लीला है, तो रामायण की कथा सुनते थे। उसी प्रकार अब बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण वात्सल्य रस को रसास्वादित करते अब लेटे हैं और मैया सुना रही है कि कैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ त्रेता युग में, अब लाला सुन रहे हैं हूं कर रहे हैं। मैया कहती है फिर उसके बाद चार पुत्र हुए, फिर राम के आविर्भाव की कथा बताएं, फिर उसके बाद बताए कि कैसे स्वयंवर सीता स्वयंवर हुआ, अब लाला को और आकर्षण हो रहा है कथा में कि मैया सीता का वर्णन आया। और जब लादिनी शक्ति का वर्णन होता है तो शक्तिमान प्रभु को बहुत आनंद आता है। तो यदि हम नारायण की सेवा करना चाहें और लक्ष्मी की सेवा ना करें तो होगा नहीं, बात नहीं बनेगी। राम की संतुष्टि सीता की संतुष्टि से होती है, उसी प्रकार कृष्ण को यदि वशीभूत करना हो, राधा रानी के चरण आश्रित होना ये अति अनिवार्य है। जो राधा रानी के चरण आश्रित नहीं होता वो प्रभु को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए ब्रजवासी बहुत चतुर हैं, कृष्ण कृष्ण कहे ना कहे जय राधे कह लेते हैं। क्योंकि उनको पता है राधा नाम रटने वाले के पीछे प्रभु डोलते हैं। राधा भजने जदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तुम्हार अकारणे गेला। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यदि तुम कृष्ण भजन करते हो और राधा रानी का भजन करने में मन नहीं लगता, अब तक परिपक्व अवस्था बात बनी नहीं, परिपक्व अवस्था आई नहीं। और यदि कृष्ण नाम रटते रटते कृष्ण भजन करते करते ये बात आने लगे कि राधा रानी के चरण आश्रित होना है, हाँ अब रंग चढ़ने लगा, कृष्ण भजन का वास्तविक फल फलीभूत होने लगा, परिपक्व होने लगा, पराकाष्ठा पहुंच गए। तो उसी प्रकार प्रभु को संतोष हो रहा है मैया सीता के अब सीता स्वयंवर वर्णन। फिर बात आई कैसे राज्याभिषेक होने वाला था, फिर मंथरा, कई कई बात कहते कहते मैया यशोदा बात कह रही है कि अब वनवास होने वाला है, और लाला के कमल रूपी पंखुड़ियों रूपी नेत्र अब लगने लगे, निद्रा आने लगी। भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर देख रहे हैं, अब नींद लगने लगी। मैया कहने लगी, फिर उसके बाद जब चित्रकूट में वन विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कथा आगे चल रहा है, लाला लेटे। फिर उसके बाद बात आई जैसे रावण आए साधु वेश में आए और फिर सीता मैया को अपहरण करने की चेष्टा की, तब तो लाला की नींद उड़ गई। अब उठकर बैठ गए, बोले लक्ष्मण बाण और धनुष ले आओ, अब इस दशानन दशमुख रावण का मैं वध करूंगा। मैया यशोदा सोचे, अब लाला ये कहां से सीख के आया है, कौन तू राम है, लक्ष्मण को पुकार रहा है, कौन है लक्ष्मण, तू तो यशोदा नंदन है, कौन से लक्ष्मण को पुकार रहा है। और तब कहते कहते बलराम भाग के आ रहे हैं, बोले ये लो बाण और धनुष ले लो, कहां से ले आए क्या पता। मैया यशोदा देखने लगी, बोले तुमको कहां से पुकारे, लाला ने तो लक्ष्मण को पुकारा, बलराम को तो नहीं पुकारा। बलराम जी कह रहे हैं, मैया आप नहीं जानती, आप जिनको राम कथा सुना रहे हो वो स्वयं राम है। मैया यशोदा बोली, वाह बढ़िया, और तो आ तुम कौन हो। मैं लक्ष्मण। अच्छा तुम लक्ष्मण हो। फिर बलदाव जी कहने लगे, मैया आप नहीं जानती, आप बहुत प्रेम करती है हमसे, इसलिए आपको विश्वास नहीं, थोड़ी श्रद्धा कर लो, थोड़ी आस्था रख लो। हम अलग अलग अवतार लेते हैं दो भाई, कभी विष्णु और कभी अनंत शेष के रूप में, और कभी राम और कभी लक्ष्मण के रूप में, और अब कृष्ण बलराम के रूप में आए हैं, दर्शन कर लो। मैया यशोदा काटी लेती है, या नीचे काटी काटी उठाती है, लकड़ी की काटी, और कहती है इधर आ, दामोदर लीला याद है, मैंने लाला के साथ दामोदर लीला की थी, तेरे साथ कभी दामोदर लीला की नहीं, कराऊं। बलदाव जी कह रहे हैं, मैया मैं सच कह रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं बात नहीं बना रहा, हर युग में हम अलग अलग अवतार में आते हैं, हम ही हैं परम ब्रह्म हैं हम। मैया यशोदा कहती है, कोई कारण है क्या कि दशावतार सब घर छोड़कर मेरे घर में अवतार लेते हैं। दूसरा कोई घर नहीं मिला, चल जा सो जा। मैया को ऐश्वर्य का कितना भी प्रदर्शन कराओ तो भंग नहीं होता। फिर तो लाला उठ गए, अब जग गए। मैया को कहते हैं, बार बार वही कथा सुनाती हैं आप, ये कथा तो आप सुना चुकी है, रामायण की कथा तो पुरानी हो गई, कुछ नई कथा बताओ। मैया कहती है, अच्छा दो चार कथाएं हम जानते हैं, अब उसी को पलट पलट कर बोलेंगे, अब कहां से नई कथा लाए। ठीक है चलो एक और नई कथा। बहुत साल पहले एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु, उसका पुत्र था बहुत बड़ा भक्त, भक्त शिरोमणि प्रहलाद। जो सातवां स्कंद है भागवत का, बहुत विस्तार में नृसिंह अवतार वर्णित है। मैया यशोदा ने पूरे सातवें स्कंद को 5 मिनट में समझा दिया। और फिर जब बात आई हिरण्यकश्यप पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज को, तुम्हारे प्रभु कहाँ है, क्या ये स्तंभ में विराजमान है? प्रहलाद महाराज कहते हैं चित्त चित्त में विराजमान, कण कण में विराजमान, स्तंभ की तो बात कहना क्या, हाँ हाँ यहाँ भी है। हिरण्यकश्यपु अब तोड़ने जाते हैं स्तंभ, लाला सुन रहे हैं, लाला सुन रहे हैं बात। और मैया यशोदा कहती है फिर हिरण्यकश्यपु ने मुक्का मारा, और जब मुक्का मारा तो स्तंभ टूट गया, और स्तंभ टूटा तो अंदर से दहाड़ने की आवाज आई, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, सब कांपने लगे। और लाला कहते हैं हाँ मैया, पता है कौन आया था? हिरण्यकश्यपु के वध करने वाले नरसिंह आए थे। मैया कहती ये कथा भी तू जानता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, वो नरसिंह कौन था? मैं ही तो था। मैं ही था वो स्तंभ तोड़कर जो आया। मैया कहती हाँ हाँ अवश्य क्यों नहीं, अगर मटका तोड़ सकता है तो स्तंभ भी तोड़ सकता है। बहुत शक्ति है, बहुत बुद्धि है तेरे में। लाला कहते हैं ये नरसिंह अवतार भी मैंने ही ली थी, राम भी मैं ही हूं, अब कृष्ण भी मैं ही हूं। मैया कहती चल सो जा, बहुत नींद लग गई बहुत कथा सुन लिया, सो जा। जिन नरसिंह अवतार की कथा सुनकर भगवान कृष्ण निद्राग्रस्त होते थे, जिन नरसिंह देव के नामों के कवच से मैया यशोदा लाला की रक्षा करती थी, जिन नरसिंह देव की प्रार्थना फल स्वरूप परशुराम जी स्वयं भ्रमण करके क्षत्रियों को उन्मूलित किए, जिन नरसिंह देव का दर्शन स्वयं रामचंद्र करते हैं, उन नरसिंह देव की स्तुति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी किए। हम जो नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दाई ने हिरण्य कशिपुर वक्ष शिला टंक नखालाए, इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यत यामी ततो नरसिंह वही नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहम आदिम शरणम प्रपत्ये। यहां तक जो हम उच्चारण करते हैं इसकी रचना स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान शशिनंदन गौर हरि की, निमाय पंडित ने इसकी रचना की। अब उसके आगे जो तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपूत अनुभृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे, ये जो हम गाते हैं ये जयदेव गोस्वामी द्वारा विरचित दशावतार स्तोत्र का एक श्लोक है। तो ये दोनों मिलाकर जो नृसिंह आरती गाते हैं उसमें दूसरा द्वितीय भाग जो है इसकी रचना जयदेव गोस्वामी ने की, परंतु प्रथम रचना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। तो मैं ये कह रहा हूं कि भगवान के अवतार स्वयं नरसिंह देव की स्तुति करते हैं, और श्रीधर स्वामी कहते हैं सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ राम कृष्ण आदि अवतार ही, राम और कृष्ण, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण, ये सर्वश्रेष्ठ, और ये दोनों अवतार ने पूरी मात्रा में नरसिंह देव की स्तुति की। और जब कृष्ण राधा रानी के भाव को अंगीकार करके महाप्रभु के रूप में आते हैं तो नरसिंह आरती के पूर्व भाग की रचना करके चले जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है चैतन्य महाप्रभु को कई बार नरसिंह अवतार लेने का सौभाग्य मिला, और भक्तों को सौभाग्य मिला ये नरसिंह अवतार दर्शन करने का। गौर लीला में नरसिंह देव हर कण में विराजमान। मैं आपके समक्ष दो तीन ऐसे प्रसंग प्रस्तुत करने की अभिलाषा रखता हूं। सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए अद्वैत आचार्य की पुकार से, ये सब हम जानते हैं ना, इस सबसे विज्ञ हैं। अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला की सेवा की, गंगा जल और तुलसी पत्र के प्रयोग से उपयोग से उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में याचना की है प्रभु आप अवतार लीजिए। तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलुकेणवा विक्रीणिते स्व आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, हम सब जानते हैं इस कथा। अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला की सेवा की, गंगा जल और तुलसी पत्र अर्पण करके और इसी का फल स्वरूप मांगा हे महाप्रभु आप कृपा करके अवतार ली। परंतु आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद और उल्लास होगा कि वो शालिग्राम शिला जो अद्वैत आचार्य ने स्तुति की और पूजन किया वो कोई और नहीं, वो एक नरसिंह शालिग्राम शिला थी। एक नरसिंह शालिग्राम शिला की पूजा कर महाप्रभु प्रसन्न होकर स्वयं अवतार लिए, बहुत सुंदर बात है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पीछे का रहस्य भी नरसिंह देव। और जब महाप्रभु अवतार लेते हैं और नवदीप के गली गली में भ्रमण करके हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन को बहुत सुंदर तरीके से प्रचार करते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्व भक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत व शशिनंद। कि महाप्रभु जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, कृष्ण प्रेम के प्रचार हेतु आते हैं, स्वयं कृष्ण हैं और राधा रानी के भाव और कांति को ग्रहण करके शची माता के गर्भ से अवतरित हुए हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के विषय में परिचय दिया रूप गोस्वामी। परंतु बहुत सुंदर बात है, रहस्य छिपा है इस श्लोक। यहां पे चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया हरि। क्या नाम दिया? हरि। अब हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए हरे मन। ये शब्द हरि जो है इसके कई सारे अर्थ है। एक अर्थ है कृष्ण, एक अर्थ है जो पाप को हरते हैं वो कृष्ण। हरि का एक और अर्थ है जो सब अमंगल, जो सब दुख को निवारित करते हैं, हरण करते हैं, अपहरण करते हैं वो हरि। हरि का एक और अर्थ है जो अपने बाल्य चेष्टाओं से बाल गोपाल के रूप में हमारे चित्त को हरते हैं, हमारे मन को हरते हैं वो हरि। हरि का एक और अर्थ है, हरि का अर्थ बंदर भी होता है, हरि का अर्थ सांप भी होता है और हरि का अर्थ सिंह भी होता है। हरि के कई सारे अर्थ, परंतु इस संदर्भ में हरि का अर्थ है सिंह। महाप्रभु को रूप गोस्वामी ने सिंह कहा, इसीलिए तो हम महाप्रभु को एक और नाम देते हैं गौर हरि। गौर हरि का अर्थ है गौर सिंह। श्री चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी तुलना करते हैं कि ये साक्षात नरसिंह है, क्योंकि नर रूप में आए हैं, नरवत लीला कर रहे हैं महाप्रभु, और सिंह है। क्यों सिंह है? क्योंकि पांच कारण है। महाप्रभु की तुलना सिंह के साथ क्यों की? इसके पांच कारण है और ये चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ सकते हैं। पांच कारण क्या क्या है? पहला कारण, नरसिंह देव के जैसा स्वर्ण कांति, हेम कांति, स्वर्ण वर्ण के महाप्रभु है। महाप्रभु की कांति क्या है? शरीर या वर्ण का ये कांति हेम कांति, स्वर्ण कांति, गोल्डन कंप्लेक्शन, आभा किस प्रकार है? प्रज्वलित स्वर्ण के समान। जिस प्रकार नरसिंह देव स्वर्ण कांति के थे, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी स्वर्ण कांति है, गोल्डन कंप्लेक्शन, गोरे वर्ण के। ये पहला कारण, नरसिंह देव जैसे। दूसरा, जिस प्रकार नरसिंह देव थे, छाती एकदम चौड़ी, कमर एकदम पतली, उसी प्रकार महाप्रभु भी वैसे, छाती एकदम चौड़ी और कमर एकदम पतली। तो पहला कारण था दोनों का वर्ण, दोनों की कांति एक समान। दूसरा कारण है दोनों का शरीर का आकार एक समान। अब तीसरा कारण, जिस प्रकार एक सिंह चलता है तो उनके केस जो है कंधे तक आते हैं, एक सिंह जैसे चलता है एकदम, एक एक नशा होता है सिंह के चाल में, है ना? गज के चाल में भी एक उन्मत्तता होती है और सिंह के चाल में भी एक नशा होती है। तो महाप्रभु भी नरसिंह देव के समान, एक सिंह के समान, एक चाल, एक राजा की चाल, और उसी के साथ साथ उनके केश जो है, उनके उनके बाल जो है कंधे तक, जैसे वो चलते हैं बहुत सुंदर निमाय विश्वांबर, केश एक सिंह के समान कंधे तक। ये तीसरा कारण। चौथा कारण क्या है? चैतन्य महाप्रभु का अवतार जब हुआ, कौन से राशि में हुआ? सिंह राशि में हुआ, लियो। तो ये चौथा कारण, वो सिंह है। और पांचवा कारण, जिस प्रकार जब अलग अलग पशु गुफा में जाके छिप जाते हैं तो सिंह अंदर जाकर दहाड़ता है, तो सभी पशु आर्त भाव से और निराश्रित भाव से भाग जाते हैं, अपने प्राण की रक्षा करने के लिए भाग जाते। उसी प्रकार गौर हरि, गौर सिंह जब हमारे हृदय की गुफा में चले जाते हैं, अंदर के कूड़े कचरे जो भरे हैं, जो अलग अलग प्राणियों के समान है, यहां ये गौर सिंह, गौर रूपी नरसिंह जब हमारे हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके दहाड़ते हैं, क्या दहाड़ते हैं? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसा गौर सिंह जब हमारे हृदय गुफा में आकर प्रवेश करके दहाड़ते हैं तो अंदर छिपे अन्य इच्छा रूपी, अनर्थ रूपी, अपराध प्रवृत्ति रूपी अन्य पशु जो अंदर छिपे हैं वो सब भाग जाते हैं। तो इस प्रकार पांच कारण है कि हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु की तुलना नृसिंह देव या सिंह से की गई। इसीलिए जब हम गौर हरि कहते हैं, हरि का एक अर्थ है कृष्ण जो गौर वर्ण में आए हैं, या हमारे नृसिंह चतुर्दशी दृष्टिकोण से देखा जाए महाप्रभु गौर हरि इसलिए हैं क्योंकि वो गोरे वर्ण के पांच कारण युक्त हरि है अर्थात सिंह। महाप्रभु स्वयं सिंह अवतार। और इसका एक और बहुत सुंदर प्रमाण है रूप गोस्वामी के प्रथम चैतन्याष्टकम के तीसरे श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं, स्वरूपम बिभ्राणो जगद अतुलम अद्वैत दैत प्रपन्न श्रीवासो जनित परमानंद गरिमा हरि दीनोधारी गजपति कृपोत्सेक तरल सचैतन्य किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम। अब इसका अर्थ सुनना चाहेंगे? चलिए सुनते हैं। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, हे महाप्रभु, आप अपने भक्तों के बहुत प्रिय हैं, उनके हृदय की बहुत निकट है, आप बहुत प्रिय हैं उनके लिए। आप कौन है? स्वरूपम बिभ्राणो जगत अतुलम अद्वैत दैत। आपका स्वरूप अद्वितीय है हे महाप्रभु, और अद्वैत दैत, आप अद्वैत आचार्य के बहुत प्रिय हैं। प्रपन्न श्रीवासो, श्रीवास ठाकुर आपके चरणाश्रित है। जनित परमानंद गरिमा, परमानंद पुरी को आप सेवा करते हैं दास्य भाव। अलग अलग भक्तों का नाम है, पर अब हमारे संदर्भ में रूप गोस्वामी जोड़ रहे हैं, हरि दीनो धारी गजपति कृपोत्सेक तरल। इस पंक्ति के दो अर्थ हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। शास्त्र ऐसा मटका है जिसमें बहुत सारा नवनीत है। नवनीत रूपी श्लोक शास्त्र रूपी मटके में हमारे आचार्यों ने मंथन करके रख दिया, और इन श्लोकों को शास्त्र रूपी मटके से पीने पर या चखने पर क्या होता है? जगत का जो भूख है वो मिट जाता है और आनंद की अनुभूति होती है। शास्त्र मटका समान है, ये सब श्लोक नवनीत समान, माखन समान, और मंथन करने वाले मैया यशोदा रूपी आचार्यगण, उन्होंने ये शास्त्र प्रस्तुत किया। तो रूप गोस्वामी ने ये नवनीत रूपी श्लोक दिया है, इसका हम ये तीसरे पंक्ति का हमारे संदर्भ से बहुत निकटतम ताल्लुक है, तो देख लेते हैं। हरि दीनोद्धारी गजपति कृपोत्सेक तरल। एक अर्थ है हरि अर्थात महाप्रभु, बहुत दीनहीन महाराज प्रताप रुद्र को कृपा करने में उत्सुक रखते हैं, उत्सुक है, औत्सुक्य। दो शब्द हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, एक शब्द है हरि, दूसरा शब्द है गजपति। क्या क्या है दो शब्द इस श्लोक में? हरि और गजपति। हरि का अर्थ है महाप्रभु कृष्ण, और गजपति का अर्थ है महाराज प्रताप रुद्र, क्योंकि जगन्नाथपुरी में यह प्रथा है कि राजा का एक नाम है गजपति, क्योंकि वो राजा है, गज के पति है। तो हरि रूपी महाप्रभु ने क्या किया? गजपति अर्थात महाराज प्रताप रुद्र को कृपा दी। ये कथा है, ये एक अर्थ हुआ। पर इसमें दूसरा अर्थ है, क्या अर्थ है? हरि का अर्थ है सिंह और गजपति का अर्थ है गज, गजराज, हाथी। इस जगत में हम देखते हैं सिंह हमेशा दहाड़ता है हाथी की हत्या करने हेतु, हाथी को नीचे खींचने हेतु। कोई ऐसा सिंह नहीं आया जिसने गज पे कृपा करने की इच्छा रखी। गज को देखो, हाथी को देखो, तो यहां सिंह दहाड़ने लगता है ताकि उस हाथी को नीचे खींचे और हत्या करे। परंतु महाप्रभु ऐसे सिंह हैं जिन्होंने गजराज, गज रूपी महाराज प्रताप रुद्र की हत्या नहीं की, नीचे नहीं किया, परंतु कृपा करने की अभिलाषा थी। सब समझ गए? दो अर्थ, एक अर्थ हरि का है महाप्रभु, और गजपति का अर्थ है महाराज प्रताप रुद्र। तो महाप्रभु ने, हरि ने गजपति पे क्या किया? कृपा की। और हमारे दृष्टिकोण से, नरसिंह चतुर्दशी के दृष्टिकोण से, हरि रूपी, सिंह रूपी महाप्रभु ने गज रूपी महाराज प्रताप रुद्र की हत्या नहीं की जैसे सिंह गज पे करता है, परंतु कृपा करने की अभिलाषा रखी। ऐसे महाप्रभु जिन्होंने सब भक्तों के उद्धार हेतु अवतार लिया, वो दिन कब आएगा? रूप गोस्वामी लिखते हैं कि वो सिंह रूपी महाप्रभु की दहाड़ने रूपी हरि नाम मेरे चित्त रूपी गुफा में सुनाई दे, ऐसी प्रार्थना करते। तो हम देखते हैं महाप्रभु स्वयं नरसिंह सिंह रूप है। एक और संदर्भ, श्रीवास ठाकुर दिन रात कीर्तन करते थे, बहुत बड़े नरसिंह भक्त थे श्रीवास ठाकुर गौर लीला में, और दिन रात कीर्तन करते थे, दिन में भी करते थे रात में भी करते थे। जो हिंदू थे वो भी इससे त्रस्त थे, जो मुसलमान थे वो भी त्रस्त थे। क्यों? क्योंकि जो हिंदू थे वो कहते थे, अरे दिन रात कीर्तन करोगे, विष्णु के नाम को उच्चारण करोगे तो विष्णु सोएंगे कैसे? वो अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कोई बाजू में रहकर करताल बजाए तो हमारी निद्रा भंग हो जाती है। तो आत्मवत मन्यते जगत, मुझे नींद ना लगे तो प्रभु को भी नींद नहीं लग सकती। तो ब्राह्मण लोग अब आकर कहते थे, शिकायत करते थे श्रीवास ठाकुर के समक्ष कि तुम जोर जोर से कीर्तन करोगे तो विष्णु जग नहीं जाएंगे, और जग जाएंगे निद्रा से क्रोधित हो जाएंगे तो सबको श्राप दे देंगे, तो पूरे हिंदू समाज में कलंक हो तुम श्रीवास। श्रीवास ठाकुर सहन करते करते चुप रहकर कीर्तन करते थे। मुसलमानों को वैसे शिकायत थी क्योंकि यहां अब दिन रात अगर कीर्तन करे तो फिर इसका प्रचार हो रहा है, और अब हिंदू ब्राह्मणों को भी यदि शिकायत होने लगे तो दोनों मिल गए। ब्राह्मणों ने जाकर कह दी मुसलमानों से, तुम जाकर अपने राजा से क्यों नहीं कहते कि ये एक कलंक बैठा है हिंदू समाज में, इसको डरा धमका कर थोड़ा चुप कराओ ताकि विष्णु क्रोधित ना हो। उन्होंने कहा ठीक है। अब अफवाह फैलाने लगे, श्रीवास तुम्हें पता है मंत्रियों ने जाकर राजा से शिकायत किया, अब राजा भेज रहे हैं अपने सैनिकों को ताकि तुम्हें बंदी बनाकर ले जाए। बिचारे श्रीवास, सरलता ही वैष्णवता, काप काप कर दरवाजा बंद करके नरसिंह देव की आराधना कर रहे थे, हे नरसिंह देव हमारी रक्षा करो, हमारे प्राण की रक्षा करो, दिन रात हम कीर्तन करते हैं आपके संतोष के लिए, अब ये सैनिक आ जाएंगे, मंत्री आ जाएंगे, राजा आ जाएंगे, हमारे बच्चों की हत्या होगी, महिला जो है उनका अपहरण होगा, आप हमारी रक्षा करें। श्री चैतन्य महाप्रभु तब गंगा के तट पर ऐसे भ्रमण कर रहे थे, और अब यहां हृदय में अलार्म बजने लगा, भक्त पुकार रहे साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयत्वहम मद अन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। जब भक्त पुकारते हैं तो प्रभु आते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। गजेंद्र ने पुकारा, प्रभु आए। अजामिल ने भक्त को, भगवान को नहीं अपने पुत्र को पुकारा, फिर भी प्रभु अपने दूतों को भेज दिए। ध्रुव महाराज पुकारे, प्रभु आए। प्रहलाद महाराज पुकारे, प्रभु आए। द्रौपदी पुकारी, प्रभु आए। पांडव ने पुकारे, प्रभु आए। जहां भक्त पुकारते हैं वहां प्रभु आते हैं। तो यहां श्रीवास पुकार रहे हैं किनको? नरसिंह देव को, महाप्रभु को नहीं, नरसिंह देव की सेवा हो रही है। और क्योंकि नरसिंह देव और महाप्रभु अभिन्न स्वरूप है, यहां अलार्म बजने लगा, महाप्रभु आवेश में आए, नरसिंह आवेश में, जाकर खटखटाने लगे, दरवाजा ठोकने लगे। श्रीवास कांपने लगे, उनको लगा कि सैनिक आ गए, दरवाजा नहीं खोल रहे। बाहर से प्रभु कह रहे, श्रीवास दरवाजा द्वार बंद करके तुम अंदर जिनकी याचना कर रहे हो, जिनकी आराधना कर रहे हो, जिनके पूजा में तुम रो रो कर अपने आश्रुओं से तुम अभिषिक्त कर रहे हो शिला को, वही प्रभु यहां बाहर तुम्हारी रक्षा करने हेतु पुकार रहे, दरवाजा खोलो। श्रीवास दरवाजा खोल दिए, महाप्रभु आ गए। श्रीवास को कहते हैं, जिन नरसिंह देव की सेवा तुम कर रहे हो मैं वही नरसिंह हूं। अब श्रीवास आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि एक दिन पहले महाप्रभु ने प्रवचन में कहा श्रीवास के आंगन में, हम सब जीव हैं, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। भक्त भाव में थे तब महाप्रभु, भक्ति के प्रचार में लगे थे, कह रहे हम सब जीव हैं, हम क्या प्रभु की सेवा, हम क्या भगवान बन सके, हम तो केवल सेवा कर सकते हैं। जीव जीव होता है, परमात्मा परमात्मा होते हैं, दोनों एक नहीं होते। जीव अणुआत्मा होता है, भगवान विभू आत्मा है। अब श्रीवास ठाकुर इस बात को जान लिए थे, समझ लिए थे। अब एक दिन बाद स्वयं प्रवक्ता कथा व्यास प्रवक्ता स्वरूप महाप्रभु स्वयं आकर अपने ही सिद्धांत को उलट पुलट करके कहते हैं, हम वही नरसिंह हैं। श्रीवास दंडवत देकर कहते हैं, प्रभु कली तो आपने समझाया था कि हम भगवान नहीं हो सकते। महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें विश्वास नहीं, देख लो, दर्शन कर लो। 16 भुज, 16 हाथ निकलने लगे, शंख धारण किए, चक्र धारण किए, बाण शर चाप सब धारण किए, तलवार लगा है, कहीं कहीं कमल का पुष्प है, और सिंह के समान दहाड़ रहे नरसिंह देव के रूप में चैतन्य महाप्रभु। श्रीवास ठाकुर कांपने लगे, ये वास्तविक नरसिंह देव। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पुकारो अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों को पुकारो, मैं सबको दर्शन देना चाहता हूं। सबको बुलाए, फिर थोड़े दास दासियां थी वो छिप कर देख रहे थे। महाप्रभु कह रहे हैं, अभी तक पूरा परिवार आया नहीं, अब अपने दासों को दासियों को पुकारो। वो सब बाहर आए और चैतन्य महाप्रभु ने अपने कर कमल से सबको सबके सिर पर हाथ रखकर रक्षा की, कहा कोई मंत्री कोई सैनिक कोई राजा आ नहीं सकता, तुम चिंता मत करो, जब नरसिंह यहां है तो तुम चिंता क्यों करते हैं, वाई फियर वेन आई एम हियर। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जीवन हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है। हमारा जीवन बिगड़ा है पर रक्षक हमारा तगड़ा है। नरसिंह देव बहुत तगड़े हैं, हमारे गुरु महाराज की वाणी है हास्य रस में। तो महाप्रभु ने रक्षा की और दर्शन कराया। गौर जो भी गौर परिषद है, कोई जो गौर भक्त है, गौर पार्षद है, इन सबको दर्शन कराया कि मैं ही नरसिंह। और ये एक बार नहीं, कई बार। एक बार तो श्रीवास के घर श्राद्ध हो रहा था उनके पिता का, तो महाप्रभु को भी आमंत्रण था, श्रीवास ठाकुर करा रहे थे, महाप्रभु गए। अब महाप्रभु ब्राह्मण है, निमाय विश्वंभर। श्रीवास ठाकुर कहे कि मैं अगर कुछ मंत्र उच्चारण करना उचित रहेगा तो मैं कौन सा मंत्र उच्चारण करूं, तो महाप्रभु ने कहा श्राद्ध के समय विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण होना चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर कहे ठीक है, बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है, स्तोत्र उच्चारण करने लगे, विष्णु के 1000 नाम का उच्चारण हुआ, और जब नरहरि नाम आया, नरसिंह नाम आया, अब महाप्रभु को पता नहीं क्या हो गया, नरसिंह आवेश में आ गए, इतने विशाल आकार में प्रदर्शन करने लगे। यहां श्राद्ध चल रहा है, श्रीवास ठाकुर सोच रहे हैं, मुझे लगता है और 4 लोगों का श्राद्ध करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि यहां नरसिंह देव प्रकट हो गए। पहले तो केवल पिता का करना था, अब ये नरसिंह आवेश में आए, 2 और 4 लोगों की मुक्ति करा देंगे, मृत्यु करा देंगे, मिलकर सबका साथ में श्राद्ध करना पड़ेगा लगता है। महाप्रभु आवेश में आ गए, विष्णु सहस्र नाम रोकना पड़ा, क्योंकि सबका मन यहां आकृष्ट हुआ, दहाड़ने लगे। गोरे वर्ण के हैं, वैसे ही 7 फुट के हैं, अब और लंबाई ऊंचाई में आ गए, अलग हाथ धारण किए, अब उसमें गदा धारण किए, और सिर्फ ये नहीं, घर में नहीं, दरवाजा तोड़कर बाहर चले गए, और रस्ते में नवदीप के गलियों में अब भागने लगे। अब सोचिए, कोई व्यक्ति 7.5 फुट का व्यक्ति, छाती चौड़ी है, कई सारे भुजाएं हैं, और अस्त्र शस्त्र लेकर भागे रस्ते में, तो सामने वाले की मनोभावना सोचकर देखिए, डर के मारे लोग यहां वहां भाग रहे थे, सब भाग रहे थे। नरसिंह आवेश प्रभु हाते गदा लिया, हाथ में गदा लेकर नरसिंह आवेश में प्रभु अवतार लिए, और क्या किए, पाषंडी जो नास्तिक थे, पाषंडी की हत्या करने हेतु नगर धैया, एक नगर से दूसरे नगर में भाग रहे थे प्रभु। अब सोचिए, स्वयं नरसिंह देव हाथ में गदा लेकर 7.5-8 फुट भागकर क्रोध आवेश में लाल आंखों के साथ और सुवर्ण कांति के साथ मुख से अब मानो लावा निकलने वाला है, ऐसे क्रोध में भाग रहे हैं। तो बेचारे कलिग्रस्त जीव जो 4-5 फुट के हैं, इनका कहना ही क्या, डर के मारे यहां वहां भाग रहे, हा भाव होने लगा। 1.5-2 घंटे के लिए ये ड्रामा चला। फिर महाप्रभु आ गए अपने भक्त भाव में, श्रीवास ठाकुर के चरण में घिर कर कहते हैं, श्रीवास मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारे घर का जो श्राद्ध था मैंने उद्ध्वस्त कर दिया, हम क्या उद्देश्य से आए और देखो क्या हुआ, मुझे क्षमा करो, ये ठीक नहीं हुआ। श्रीवास ने कहा, नहीं नहीं बढ़िया है, सरप्राइज जब होता है सबको अच्छा लगता है। आपने ये जो बहुत सुंदर मनोरंजन कराया प्रभु, ये बहुत सुंदर। महाप्रभु ने कहा, नहीं, किसी को ऐसे नरसिंह आवेश में आकर डरा धमकाना ये ठीक नहीं, किसी के भी चित्त में भय लाना ये ठीक नहीं। श्रीवास ठाकुर ने कहा, प्रभु आपके लीला प्रदर्शन से 2 फायदे हुए। एक फायदा ये, जो आपके दर्शन करने के लिए इच्छा नहीं रख रहे थे स्वयं आप जाकर दर्शन देकर आए, जो पाषंडी थे, जो नास्तिक थे, जो आप में श्रद्धा नहीं रख रहे थे, आकर दर्शन नहीं कर रहे थे, आप स्वयं जाकर दर्शन। जैसे कोई रोगी हो, चल पाता है तो वो वैद्य डॉक्टर के पास चला जाता है, वैद्यराज के पास, और बिल्कुल अगर चल ना पाए, शक्तिहीन हो जाए, तो डॉक्टर स्वयं आते हैं। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं, जो भक्त हैं वो भी पेशेंट हैं, पर वो आपके पास आते हैं, आपके मंदिर आते हैं दर्शन करने, पर ये जो नास्तिक हैं इतने रोगी हैं कि वो चलकर नहीं आते, तो आप स्वयं डॉक्टर के रूप में, वैद्यराज के रूप में आप जाकर दर्शन देकर आए तो अति उत्तम है। और दूसरा फायदा तो ये हुआ, आपको देखकर उनका चित्त पवित्र हुआ और निस्सहाय भाव से उन्होंने आपके नाम का उच्चारण किया। तो शास्त्र में वर्णन आता है, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघम हरम भी, कि जो मृत्यु के समय, भय के समय, चीखते समय, चिल्लाते समय, कभी घिरते समय, भीगते समय, आग में जलते समय, डूबते समय, जो भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति में भय के कारण जो प्रभु के नाम का उच्चारण होता है निस्सहाय भाव से, उसके कारण, उस पुकार के कारण चित्त शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं, आपके लीला प्रदर्शन से सोचे कितने निस्सहाय भाव से, आर्थ भाव से सब लोग प्रभु का नाम उच्चारण कर रहे थे, तो ये फायदा ही हुआ। तो कहने का हमारा आशय ये है कि महाप्रभु ने यहां भी नरसिंह भाव का प्रदर्शन किया। एक और सुंदर वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को यहां वहां हर जगह, हर गली में, नवदीप के हर क्षेत्र में और हर दिशा में प्रसारित कर रहे थे, तो भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, सब कीर्तन करने लगे। तब चांद काजी नाम का बहुत बड़ा मंत्री था, बहुत बड़ा राजा था, और उसने सोचा, ये क्या चल रहा है, बहुत लंबी कथा है, मैं सारांश प्रस्तुत करूंगा यहां पर समय के अभाव के कारण। तो चांद काजी ने कहा, ये क्या चल रहा है, सब हिंदू आकर अपने भगवान का नाम प्रचार कर रहे हैं, तो मुसलमान क्या करेंगे, घर में बैठेंगे? नहीं, हमारा धर्म है कि इनके धर्म के प्रचार में कोई बाधा डाल, ऐसे चांद काजी सोच रहे थे। आज के अर्वाचीन मानव समाज में कई सारे मुसलमान हैं जो अच्छे हैं, जो अन्य धर्म की भी, अपनी धर्म की भी वो सम्मान करते हैं और अन्य धर्म की भी सम्मान करते हैं, और कई हिंदू भी हैं जो अपने सनातन धर्म का भी सम्मान करते हैं और इस्लाम का भी सम्मान करते हैं, और ऐसे ही मिलजुल कर रहना चाहिए समाज में, क्योंकि अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं, और जो भी समान धार्मिक समानता है इसको मानकर हमें आगे चलना है। परंतु चांद काजी ऐसा नहीं था, उसने सोचा कि इनके धर्म के प्रचार से हमारे धर्म की हानि होगी, तो चलो इनके करताल और मृदंग ही फेंक देते हैं, इनके संकीर्तन आंदोलन में विक्षेप करते हैं, बाधा करते हैं। गतिरोधक रूप में चांद काजी ने अपने मंत्रियों से कहा, जाकर मृदंग तोड़कर आओ। मृदंग नहीं रहा तो कीर्तन में आनंद नहीं होगा। जाकर मृदंग तोड़कर आए। चैतन्य महाप्रभु को जब ये समाचार मिला, महाप्रभु ने कहा अब ये तो मृदंग तोड़े, हम जाकर छाती तोड़कर आते हैं। चलिए महाप्रभु क्योंकि सिंह है तो दहाड़ने लगे। असंख्य संख्या में भक्तगण, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं इतने लाखों भक्त एक ही स्थान में एकाग्रत हुए या एक ही स्थान में आए कि अगर मैं कहूं कि हजार थे तो असत्य होगा, अगर मैं कहूं लाखों की संख्या में थे तो भी असत्य रहेगा। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। और कहते हैं अगर कोई किसी को संशय है इस बात में, क्योंकि संशय मत करना, जो संशय करेगा वो विनष्ट हो जाएगा, मैं सत्य बात कह रहा हूं, लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त वहां आ गए थे, मिल गए थे, जुट गए थे। इतना कि चलने में स्थान नहीं था, जगह नहीं था, लोग तैर तैर कर गंगा पार कर रहे थे और सब चांद काजी के घर के बाहर गए और कीर्तन करने लगे। चांद काजी बाहर आए, बोलो ये क्या चल रहा है? महाप्रभु ने कहा ये प्रश्न हम पूछने आए हैं, क्या चल रहा है? मृदंग तोड़ने की बात सुनाई पड़ी तो चांद काजी डर गए अब, क्योंकि इतने संख्या में लोग आए। चांद काजी कहे हम थोड़ा एकांत में बैठकर बात करें महाप्रभु को, ये एकांत एकांत में जो कहना है जोर से कहो, हम सब, ये सब मेरा परिवार। चांद काजी कहने लगे मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन मैंने मृदंग तोड़ा उस दिन रात में एक बहुत भयावह सपने का दर्शन हुआ। सपने में मैंने एक सिंह को देखा और उनके नख थे, नाखून बड़े बड़े, दहाड़ते हुए सिंह दांत का प्रदर्शन कर रहे थे, अतिड़ियों की माला पहने थे, खून से लथपथ थे और मेरे छाती पर बैठ गए। सपना चल रहा है अब तक तो सपना चल रहा है। कह रहे छाती पर बैठ गए और दहाड़ने लगे और अपने नख से प्रहार करने लगे। कहने लगे तू मृदंग तोड़ेगा, अब देख मैं क्या करता हूं, छाती तोड़ता हूं और फाड़ने लगे। चांद काजी कहने लगे डर के मारे जब मैं उठा कांप कर, मैंने अपने छाती में दर्शन किया तो नाखून के निशान थे। महाप्रभु चांद काजी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे वो सिंह कोई दूसरा नरसिंह नहीं, मैं ही था, मैं ही नरसिंह आवेश में आया तुम्हारे सपने में और छाती फाड़ने की चेष्टा की। एक मृदंग तुम तोड़ दिए तो केवल नाखून के निशान तक मैं छोड़ रहा हूं, तुम एक और तोड़ोगे फिर देख लो जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये डराने धमकाने वाली जो शैली है ये भी हमारी परंपरा में आता है भक्त प्रति अपराध कर ही राम रोष पावक सोजरे। भक्त के प्रति जब अपराध होता है तो प्रभु क्रोधित हो जाते। तो चांद काजी फिर आलिंगन किए, कहने लगे मैं आपको वचन देता हूं प्रभु, मैं आपका मामा समान हूं मैं मामा समान हूं, तुम हत्या तो नहीं करोगे ना, मामा की हत्या तो नहीं करोगे? महाप्रभु ने कहा नहीं, पर शर्त दो कि कभी हरिनाम संकीर्तन में विक्षेप नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगी। चांद काजी ने कहा मैं प्रण खाकर कहता हूं ना मैं और ना मेरे कोई अनुयायी तुम्हारे हरिनाम संकीर्तन में बाधा देंगे। और इसका पूरा श्रेय जाता है नरसिंह देव को, क्योंकि नरसिंह देव ने चांद काजी को नानी याद दिलाई थी भय धमकाकर नानी याद दिला दी और फिर उन्होंने दोनों ने आलिंगन किया महाप्रभु और चांद काजी ने। अभी हम कहेंगे कि चांद काजी ने कहा मैं मामा समान हूं, मामा की हत्या तो नहीं करोगे? ये बहुत सुंदर संदर्भ है प्रिय भक्तों, क्योंकि ये चांद काजी कोई और नहीं कंस के ही अवतार थे। द्वापर युग के कंस कलयुग में चांद काजी बनकर आए जब कृष्ण महाप्रभु बने, वो वही मामा है। और कह रहे हैं कि पिछले अवतार में तो मामा की हत्या की, अब इस अवतार में तो नहीं करोगे ना? पिछले अवतार में मामा के छाती में बैठकर तुमने हत्या की थी। महाप्रभु कहे इस अवतार में केवल छाती में बैठकर नाखून के निशान तक ही छोड़ देंगे तो यहां भी हम देखते हैं गौर अवतार में नरसिंह देव का बहुत सुंदर स्थान है। चैतन्य महाप्रभु जब अलग अलग स्थान में भ्रमण किए दक्षिण भारत के, जियड़ नरसिंह हो, अहोबिल क्षेत्र हो, सिंहाचल हो, अलग अलग स्थान में महाप्रभु गए। और विशेष महाप्रभु का एक आकर्षण रहा है नरसिंह देव के प्रति, जहां भी नरसिंह देव का मंदिर होता था श्री चैतन्य महाप्रभु आकृष्ट होकर वहां जाते थे। आकृष्ट होकर जाते थे और जाकर प्रार्थना करते थे, नरसिंह देव श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुखा पद्म बृंग। ये जो हम कहते हैं ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु की ही रचना है। चैतन्य महाप्रभु ने रचना की अपने सुंदर मुख कमल से नरसिंह देव के स्तुति में। इसका अर्थ क्या है चलिए जान लेते हैं। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, जैसे श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय श्री नृसिंह। प्रहलादेश, प्रहलादेश का अर्थ है प्रहलाद, प्रहलादस्य ईशः इति प्रहलादेश, प्रहलाद के नाथ, जैसे हम कहते हैं गोपीनाथ का अर्थ है गोपियों के नाथ, वैसे प्रहलादेश प्रहलाद के ईश, प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग। पद्मा का अर्थ है लक्ष्मी और मुख पद्म अर्थात उनके मुख कमल। लक्ष्मी देवी से नरसिंह देव इतना प्रेम करते हैं क्योंकि अर्धांगिनी है, तो पद्मा अर्थात लक्ष्मी के मुख पद्म मुख कमल के ये भृंग है। देखिए नरसिंह देव को हमेशा एक रौद्र रूप भीभत्स रूप भयानक रूप में ही प्रदर्शित किया गया, परंतु हमारे नरसिंह देव बहुत वात्सल्यमय भी है क्योंकि प्रहलाद महाराज जब आए थे उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपने गोद में रखकर जैसा पिता प्रेम करते हैं रो रो कर उनके शरीर को अभिषिक्त किया था अपने नेत्रों से, और जिस प्रकार एक सिंह अपने बच्चे के प्रति प्रेम या प्रीति का प्रदर्शन करता है कैसे चाट चाट कर, उसी प्रकार नरसिंह देव 100% अपने रोल में स्थित होकर शत प्रतिशत अपने लीला में स्थित होकर सिंह के रूप में अपने बच्चे प्रहलाद महाराज के मुख को चाट रहे थे और साथ साथ में रो रो कर स्नान कराए। मानो ऐसा लगा प्रहलाद एक मरुभूमि थे जो नरसिंह देव के विरह के कारण तापमान बढ़ बढ़कर अग्नि में ज्वाला में जल रहे थे, और अब नरसिंह देव ने चाट चाट कर रो रो कर मानो वर्षा ऋतु से उस मरुभूमि के ज्वाला अग्नि को शांत कराया। प्रहलाद विरह अग्नि में जल रहे थे, मरुभूमि ग्रीष्म ऋतु, और नरसिंह देव के आश्रु और नरसिंह देव की प्रेम भरे चाटना ये मानो वर्षा ऋतु थी। वर्षा ऋतु के मेघ समान नरसिंह देव के नेत्र यहां से झर 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 वात्सल्य प्रेम अश्रु प्रवाहित करके प्रहलाद महाराज को स्नान कराए अभिषिक्त कराए। हर जगह देखते हैं भक्त प्रभु का अभिषेक करता है, नरसिंह अवतार में भगवान आकर भक्त का अभिषेक कराते हैं और विरह अग्नि को शांत कराए। तो नरसिंह देव यहाँ वात्सल्य रूप में भी है, उसके साथ साथ नरसिंह देव बहुत रोमांटिक भी, बहुत माधुर्यमय लीलाएं भी हैं उनकी, बहुत प्रेम करते हैं लक्ष्मी देवी से। इसलिए हम देखते हैं हर जगह रौद्र नरसिंह उग्र नरसिंह स्थानु नरसिंह, और जब लक्ष्मी देवी आकर उनके गोद में बैठ जाती तो शांत नरसिंह बहुत शांत हो जाते। तो मानो लक्ष्मी देवी पद्मा के मुख पद्म के ये भृंग है। ही इज द बम्बल बी, ही इज द हनी बी ऑन द लोटस फेस ऑफ पद्मा लक्ष्मी। तो प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म, तो ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु की ही रचना है नरसिंह देव के चरणों में प्रार्थनात्मक भाव से। उसी प्रकार एक सुंदर, एक और बहुत सुंदर नरसिंह देव का स्थान है गौर लीला। चैतन्य महाप्रभु जब गदाधर पंडित के साथ बैठकर तोट गोपीनाथ में चर्चा करते थे तो भागवत की चर्चा होती थी प्रतिदिन 3 घंटे, दोपहर के 3 घंटे जो मैं सोता हूं वो महाप्रभु और गदाधर पंडित भागवत चर्चा करते हैं। 3 घंटे क्या चर्चा करते थे, गदाधर पंडित सप्तम स्कंद भागवत का पाठ करते थे, सप्तम स्कंद अर्थात प्रहलाद चरित्र नरसिंह चरित्र, और चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। एक बार सुनने के बाद हम क्या करते हैं, हाँ सातवां स्कंद तो हो गया, अब 8वां स्कंद। चैतन्य महाप्रभु कहते थे गदाधर पंडित से, जिस प्रकार गिरिराज गोवर्धन लीला में जितना भी ब्रजवासी पवाए खिलाए, गिरिराज क्या कहते थे, अनियोर, मुझे और पाने की अभिलाषा है, और पाने की इच्छा है, उस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी गिरिराज यहाँ ब्रजवासी रूपी गदाधर पंडित के साथ तोट गोपीनाथ रूपी वृंदावन में बैठकर क्या कहते थे, अनियोर। सप्तम स्कंद भागवत मुझे और सुनना है, एक और बार सुनना है, एक और बार सुनना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव को अंगीकार किए, हम तो अपेक्षा करेंगे कि वो रास पंचाध्याय, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, ये सब संदर्भों को सुनेंगे, पर इनको तो सुनते ही थे गंभीरा में। परंतु यहां बैठकर सप्तम स्कंद भागवत, नरसिंह देव की लीला, प्रहलाद महाराज का चरित्र एक बार नहीं, दो बार नहीं प्रिय भक्तों, 108 बार सुने श्री चैतन्य महाप्रभु, पूरे सातवें स्कंद को 108 बार। एक बार हो जाए, गदाधर पंडित पाठ करते थे, महाप्रभु कहते थे एक और बार प्रारंभ से शुरू कर दो। 108 बार यदि राधा रानी स्वयं बैठकर नरसिंह चरित्र सुन सकती है, तो हम सातवें स्कंद को क्यों नहीं सुन सकते? हम नरसिंह देव की उपासना क्यों नहीं कर सकते? इतनी सुंदर बात है ना। प्रहलाद महाराज बहुत प्रिय है चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह देव बहुत प्रिय है श्री चैतन्य महाप्रभु। और सातवें स्कंद में एक पंक्ति है, प्रहलादो केशव प्रिय, कि प्रहलाद महाराज केशव की बहुत प्रिय है, भगवान की बहुत प्रिय है। इसी भाव में हम देखते हैं हमारे गौड़ीय आचार्य भी नरसिंह देव से बहुत विशेष प्रीति रखते हैं। जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ने एक रचना की है बंगाली में, नरसिंह देव के चरणों में प्रार्थना। अब इसके पीछे भी एक इतिहास है। क्या है इतिहास? भक्ति विनोद ठाकुर प्रातः काल में बैठकर नाम जप करते थे। कितने बजे? 3-4 बजे बैठकर नवदीप में नाम जप करते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रतिदिन उसी समय हवा का एक झोंका लगता था और भक्ति विनोद ठाकुर जो नाम जप करते थे उनको एक विशेष आह्लाद होती थी उस हवे के झोंके से, उस पवन के झोंके से। धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ हमारे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे और विचार करते थे कि उसी समय प्रातः काल में ये हवा पवन का झोंका लगना, हवा का झोंका लगना और उसमें इतना आनंद आना, कुछ रहस्य छिपा है। तो प्रार्थना किए। प्रार्थना करने पर पता चला नरसिंह देव स्वयं प्रकट हुए भक्ति विनोद ठाकुर के समक्ष और कहने लगे, हे ठाकुर महाशय, मेरा नाम नरसिंह है। ठाकुर महाशय ने कहा, जानते हैं प्रभु, हम किन्हीं और अवतार को जाने ना जाने, आपको तो अवश्य जानते हैं। आधे सिम और आधे नर का रूप आप ही का है। हे प्रभु, आप बताइए आप यहां क्या कर रहे हैं? तो नरसिंह देव ने कहा भक्ति विनोद ठाकुर से, मैं प्रातः काल में भक्त उठने से पहले नवदीप में जो भी भक्त हैं उन सबका जाकर दर्शन करता हूं, और क्योंकि जाते समय मैं चलता हूं विचरण करता हूं, इसलिए ये हवे के झोंके आपको लग रहे हैं, क्योंकि ये मेरे चलने का प्रभाव है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की, हे नरसिंह देव, आप रोज आकर मुझे ऐसे ही दर्शन देते रहिए, और आपके चरणों में प्रार्थना ये है कि आप कृपा करके मेरे हृदय में स्थित अनर्थ रूपी हिरण्यकशिपु की आप नख से आप ध्वंस कीजिए, नष्ट विनष्ट कीजिए, उन्मूलित कर दीजिए, पराजित कर दीजिए। अनर्थ रूपी हिरण्यकशिपु जो छिपे हैं आप इनका वध कर दीजिए। नरसिंह देव इतना प्रसन्न हुए भक्ति विनोद ठाकुर से कि नरसिंह देव ने भक्ति विनोद ठाकुर को एक नरसिंह मंत्र दिया। नरसिंह देव ने, भक्तगण कृपया करके ध्यान से सुन लीजिए, नरसिंह देव ने भक्ति विनोद ठाकुर को स्वयं एक नरसिंह मंत्र प्रदान की और भक्ति विनोद ठाकुर से कहा, आप अकेले बैठकर इतना प्रचार कर रहे हैं और इतने आस्तिक नास्तिक हैं, यहाँ पाषंडी यवन है जो आपको नीचा गिराने की चेष्टा कर रहे हैं, कभी भी आपको प्राण की रक्षा करने की आवश्यकता हो, ये नरसिंह मंत्र आप उच्चारण कीजिए, मैं प्रकट हो जाऊंगा। नरसिंह देव ने स्वयं अपना मोबाइल नंबर दे दिया, जैसे कुछ काम हो तो स्पीड डायल कर देना, मैं आ जाऊंगा। अब भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने आजीवन इस नरसिंह मंत्र का उच्चारण किया, फिर उसको दिया प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आजीवन इस मंत्र, नरसिंह मंत्र, रक्षा मंत्र का उच्चारण किया, फिर उन्होंने अपने एक शिष्य को दिया। और उन शिष्य ने श्रील प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के दूसरे शिष्य को दिया, जिनका नाम है श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। और इन्होंने इस मंत्र को रखा और हमारे इस्कॉन के श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज को पुकारा और कहा कि जो नरसिंह मंत्र नरसिंह देव ने भक्ति विनोद ठाकुर को दिया, भक्ति विनोद ठाकुर ने सरस्वती ठाकुर को दिया और इसी संप्रदाय में मेरे पास आया है, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कहे, अब ये मंत्र मैं आपको देना चाहता हूं, श्रील भक्तिचारू महाराज। श्रील भक्तिचारू महाराज तब नवदीप में थे, उन्होंने कहा मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत पतित हूं, इतना उच्च कोटि का नरसिंह मंत्र उच्चारण करने की पवित्रता मुझ में नहीं है, परंतु मेरा एक गुरु भाई है जो बहुत वरिष्ठ है और उनका नाम है परम पूज्यपाद श्रील इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, मैं इच्छा करता हूं कि आप ये मंत्र उनको दें। श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज ने इंद्रद्युम्न महाराज को पुकारा और श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के पास ले गए और कहा ये आपको एक नरसिंह मंत्र देना चाहते हैं, इसका उच्चारण करने से कहीं भी यदि कोई व्याधि हो या कोई ब्रह्म राक्षस या कोई काला जादू जादू टोना जो भी हो, इस सबसे मुक्ति होगी, निवारण होगा। श्रील इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ने इसको आज्ञा जैसे लेकर श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज की बात मानकर श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज से ये नरसिंह मंत्र प्राप्त की परंपरागत। जब श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज अप्रकट हुए तब श्रील इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज रो रोकर ये कथा स्वयं बताते हैं और कहते हैं कई बार मैं जब अलग अलग देशों में प्रचार के लिए जाता हूं और प्राण संकट होता है तब ये नरसिंह मंत्र का उच्चारण करके मैं इस रोग से या इस परिस्थिति से मुक्त हुआ हूं, तो इस मंत्र का जो प्रभाव है मैं जानता हूं। फिर रोकर कहते हैं परम पूज्यपाद भक्तिचारू स्वामी महाराज इस मंत्र का उच्चारण करके कोविड से मुक्त हो सकते थे, परंतु वो इतने दयालु हैं, वो स्वयं अप्रकट हो गए पर मेरे प्राण की रक्षा के लिए वो मंत्र मुझे प्रदान किए तब। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारे संप्रदाय में नरसिंह देव का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा स्थान है। श्रील प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर स्वयं जब अपने शिष्यों को भेजे पाश्चात्य देश में प्रचार करने हेतु, तब उन्होंने नरसिंह कवच दिया उनको। नरसिंह कवच मंत्र, ये हम जो नरसिंह मंत्र नरसिंह कवच कहते हैं वो नरसिंह कवच नहीं, दूसरा नरसिंह कवच एक त्रैलोक के विजय नामक अध्याय से पाया जाता है। जो ब्रह्म संहिता हम उच्चारण करते हैं ना, इसके अलावा एक ब्रह्म संहिता है, एक और ब्रह्म संहिता, उसमें त्रैलोक के विजय नामक एक अध्याय है जिसमें एक नरसिंह कवच पाया जाता है। उस नरसिंह कवच का चयन करके श्रील प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों को प्रदान की और कहा जब आप पाश्चात्य देश में जाएंगे प्रचार करने, माया नगरी है, कुछ भी हो सकता है, आप सब सन्यासी हैं, आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन की रक्षा के लिए, अपने प्रचार की रक्षा के लिए नरसिंह देव के चरणाश्रित हो जाओ। सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने महाप्रभु के जन्म स्थली योग पीठ में भी एक नरसिंह देव की स्थापना की और हमारे प्रभुपाद जी ने इसी परंपरा को आगे लेके जाकर नरसिंह आरती हमें प्रदान की। अगर आप देखेंगे इतने बार नरसिंह आरती गाने की परंपरा बाकी स्थानों में नहीं है, और नमस्ते नरसिम्हाय अलग है, तवकर कमलवरे अलग है, हमारे प्रभुपाद जी ने इनको जोड़कर नरसिंह आरती घोषित किया। जो आज जब हम नरसिंह आरती गाते हैं ये प्रभुपाद जी का देन है जो दोनों जोड़कर प्रदान किए। जब श्रील प्रभुपाद जी वृद्ध हो गए थे और उनको डर था कि कहीं प्राण ना छूट जाए, वैसे तो भक्त डरता नहीं प्राण छूटने से, पर उनका डर क्या था, अगर प्राण छूट जाएगा तो ग्रंथ रचना आदि में रुक जाएगी, प्रचार आंदोलन रुक जाएगा, हे नरसिंह देव आप मुझे और थोड़ी आयु दे, लंबी आयु दे ताकि प्रचार करें। तो तब प्रभुपाद जी ने पूरे इस्कॉन संस्था में ये आदेश दिया कि हर आरती के बाद नरसिंह आरती होना चाहिए और सभी भक्त मेरे लंबे आयु की आप प्रार्थना करें, ताकि जितना मैं रहूं उतना मैं ग्रंथ रचना करूं, उतना प्रचार कर पाऊं। और प्रभुपाद जी का जो स्वास्थ्य बिगड़ गया था, अब नरसिंह प्रार्थना के बाद बेहतर होने लगा और फिर प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ हमें दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं मायापुर में भी जब राधा रानी राधा माधव पर जब आक्रमण हुआ था, प्रहार हुआ था, कई सारे आतंकवादी आए थे, राधा रानी को लेकर भाग गए थे, पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर गोली चलने लगी भक्तों पर, तब ये निर्णय हुआ कि रक्षा करने हेतु नरसिंह देव की स्थापना होनी चाहिए। तो हमारे मायापुर मंदिर में भी उग्र नरसिंह देव की स्थापना हुई और उस दिन से लेकर आज तक राधा रानी तो दूर की बात, कोई सब्जी भी चुरा नहीं सकेगा कोई फल भी चुरा नहीं सकेगा, क्योंकि जलते हुए ज्वालाशील उग्र नरसिंह स्थानु नरसिंह वहां खड़े हैं। तो पंक जांगरी प्रभु, जिनका भी शरीर पूरा हुआ, भगवत धाम लौट गए, उन्होंने 50 साल नरसिंह देव की सेवा की मायापुर में। और जब उनको पूछा गया कि आपके भाई राधा माधव की सेवा करते हैं और गौड़ीय परंपरा में होकर राधा माधव की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा साध्य है, यही हमारा सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, तो आप भला नरसिंह देव की सेवा क्यों कर रहे हैं? तो पंकजांगरी प्रभु ने कहा, मैं नरसिंह देव की सेवा नरसिंह लोक जाने के लिए नहीं कर रहा, राधा कृष्ण की सेवा करने में जो बाधाएं आती हैं इनको उन्मूलित करने के लिए नरसिंह देव की प्रार्थना करता हूं। हे नरसिंह देव, राधा कृष्ण के चरणों में भक्ति बनी रहे और यदि उस भक्ति के पथ पर कोई बाधा आ जाए तो आप कृपा करके अपने नखों से उनको उन्मूलित कर दीजिए, निकाल दीजिए, नष्ट विनष्ट कर दीजिए। तो जिस प्रकार वृंदावन में ब्रजवासी गण गिरिराज के आश्रित हो जाते हैं ताकि राधा कृष्ण की सेवा चलती रहे, हर चीज के लिए गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं, उसी प्रकार नवदीप के जो भक्त हैं, राधा कृष्ण की सेवा में बाधा यदि आ जाए तो नरसिंह देव के चरणाश्रित होते हैं। तो जो गिरिराज गोवर्धन का स्थान है वृंदावन में, वही नरसिंह देव का स्थान है नवदीप में। और क्योंकि हम गौड़ी परंपरा के हैं, हम नवदीप को वृंदावन के समकुल मानते हैं, इसलिए नरसिंह देव और नरसिंह चतुर्दशी ये तिथि और ये अवतार और ये बहुत सुंदर विग्रह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण गुरुत्व महत्व और प्रधान प्राधान्य युक्त भाव से और स्थान से नरसिंह देव की सेवा ये हमारे संप्रदाय में पाई जाती है। तो यही कहते कहते मैं वाणी को विराम दूंगा। नरसिंह देव की जय, गौड़ीय गुरु वर्ग की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, शशिनंदन गौर हरि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय जय श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन धाम की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।